परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
उसने मुझको मसा किया है। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
रोने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, उनका दुख दूर करके खुशियों का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर आनंद का ओढ़ना उड़ाऊं।
राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो खुशियाँ हो, राख के बदले सेहरा हो, मातम ना हो खुशियाँ हो, राख के बदले सेहरा हो, मातम ना हो खुशियाँ हो, राख के बदले सेहरा हो, मातम ना हो खुशियाँ हो, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार का परिचय और यूहन्ना को सुसमाचार वृतांत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर मानव रूप में इस दुनिया में आया इसके बारे में, एवं यीशु वचन है अर्थात आदि में था, परंतु देह धारण करके उसने हमें परमेश्वर का साक्षात दर्शन दिया। इसी कारण यूहन्ना ने कहा कि हमने उसे छुआ है। इन विषयों को देखेंगे। वचन ही परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर का प्रगटीकरण है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मित्रों, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का परिचय देने में तीन अति उत्तम वाक्य लिखते हैं, आदि में वचन था, दूसरा वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दें, वचन प्रभु यीशु मसीह का सर्वोच्च एवं सर्वत्र पद नाम है। इसका मूल अर्थ ज्ञात करना आसान काम नहीं है। यह तो निश्चित है कि वचन यूनानी दर्शन शास्त्र का वचन नहीं है, वह इब्रानी धर्म शास्त्र का मेमरा शब्द है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वचन का पुराने नियम में कैसा महान महत्व है। जिस प्रकार यहोवा नाम का उच्चारण नहीं किया जाता था, उसी प्रकार वचन है, और पुराने नियम में परमेश्वर के सब नामों को एक साथ रखकर अब उसे आदि में कहकर संबोधित किया गया है। यदि आदि में बाइबल के प्रथम शब्दों से पहले का है, तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि कोई इस आदि की तिथि बना या कर पाएगा, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह आदि 4004 ईस्वी पूर्व है। यह समय वास्तव में अरबों वर्ष का है। हम अनंत काल के परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि से पूर्व वह था और लेखक के कहने का अर्थ भी यही है। मेरे मित्रों, यहाँ वह कहता है था, वह यह नहीं कहता है। यह आदि कौन सा समय है? मित्रों, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। क्या यही परमेश्वर का आरंभ है? जी नहीं, आपको अरबों अरब वर्ष पीछे जाना होगा और हो सकता है आप मुझसे भी पीछे जा सकते हैं। सृष्टि के अरबों वर्ष पूर्व भी वह था। वह अनंत काल से निकलकर हमारे बीच में आया था और उसका आरंभ नहीं है। जब आदि का आरंभ हुआ तब वह था। किसी ने कहा कि उसका आरंभ कभी न कभी तो हुआ होगा। ठीक है, आप बताएं कि आरंभ कहां से हुआ है? जहां से भी आरंभ हुआ है तब भी वह वहां पर था। मित्रों, संसार में ऐसा कोई नहीं जो इस आदि को आंक सके। यह वाक्य हमें समय में ले जाता है। और दूसरा वाक्य है, और वचन परमेश्वर के साथ था। इस वाक्य से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु परमेश्वर से अलग है। आप उसे पिता परमेश्वर के साथ एक नहीं कह सकते, क्योंकि वह उसके साथ अलग है। अब किसी ने एक प्रश्न पूछा, यदि वह परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर नहीं है? अलग वाक्य इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देता है, वचन ही परमेश्वर था। यह सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखा गया है और यूनानी के वाक्य में वचन कर्ता के स्थान में है, अर्थात वह मुख्य शब्द है। वहां लिखा है, और परमेश्वर का वचन था। अतः यदि कोई प्रभु यीशु को ईश्वर होने से स्वीकार न करे तो परमेश्वर नहीं है, यह तो संभव नहीं। मेरे मित्रों, अब पद 14 में भी तीन वाक्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ध्यान दीजिए, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूनानी दार्शनिक संभवतः हमारे साथ पद एक पढ़ते समय बैठा रहता, परंतु इस पद पर वह निश्चय ही उठकर चला जाता, क्योंकि वह कभी स्वीकार नहीं करता कि परमेश्वर देह धारण करे। यूनानी भाषा, जो सुसमाचार की मूल भाषा है, उसमें लिखा है, वचन देह में पैदा हुआ, वही आदिकालीन परमेश्वर। और दूसरी बात हम पाते हैं जो उपवाक्य है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पौलुस हमारे देह के लिए डेरा शब्द का प्रयोग करता है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5:1 क्योंकि हम इस नाशमान एवं क्षणभंगुर देह में वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी देह में वास किया। और तीसरा व्याख्या हम आगे देखते हैं, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की, अर्थात अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यहाँ परिपूर्ण से अर्थ है इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। वह संपूर्ण ईश्वरत्व लेकर यहाँ पर आया था। हम पद 18 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना 2:24 में यीशु ने उस सामरी स्त्री से कुएं पर कहा था कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात मानवीय आंखों से वह दिखाई नहीं देगा। अब आप पूछेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट हुआ है, याकूब ने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया था। मित्रों, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पुराने नियम में जहां जहां परमेश्वर का प्रगटीकरण है, वह वास्तव में उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति थी। अब दूसरा वाक्य है, एकलौता पुत्र। नेस्ले एक जर्मन वासी विद्वान था जिसका अनुवाद मुझे सबसे उत्तम प्रतीत होता है। उसके अनुसार यह वाक्य है, एकमात्र परमेश्वर। हमारी आम धारणा यह है कि वह परमेश्वर से कम है, परंतु ऐसा नहीं। वह सेवक अवश्य बना, परंतु उसने स्वयं कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:39 में, मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मित्रों, वह न तो परमेश्वर के सिर से और न ही उसके पांव तले से आया था, वह पिता की गोद में से आया था। वह परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए आया था। अब हम तीसरे वाक्य को देखते हैं, उसी ने उसे प्रकट किया। यूनानी भाषा का जो शब्द प्रकट के लिए है, उसका अर्थ है बाहर निकाला। जगत का परमेश्वर जो आदि में था, वह बाहर निकल आया, अर्थात देह को धारण किया। मेरे मित्रों, अदृश्य परमेश्वर को देखने और जानने के लिए आपको मसीह यीशु को निहारना होगा। अब आइए हम पद 1:14 और 18 के पहले वाक्य के साथ रख करके देखें। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। मित्रों, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह आत्मा है। हम उसे कैसे जान पाएंगे? इस कारण वह देह में उपस्थित हुआ ताकि हम उसे जाने। हम स्वर्ग में चढ़कर उसे नहीं देख सकते हैं, अतः वह पृथ्वी पर आया और हमारे बीच में डेरा किया। अब फिर से पद 1:14 और 18 के दूसरे वाक्यों को साथ में रख करके देखें। वचन परमेश्वर के साथ था, हमारे बीच में डेरा किया, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। अब यहां ध्यान दें, वचन परमेश्वर के साथ बराबर के स्तर पर था। स्वर्गदूत उसे दंडवत करते थे। फिलिपियों को पौलुस ने लिखा 2:6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। इसका अर्थ यह है कि उसने परमेश्वर होने के लिए परिश्रम नहीं किया। वह परमेश्वर ही था और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता था। वह 35.5 तक इस संसार में मानव बनकर रहा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को व्यक्ति के रूप में जान सकें। अधिक आसानी से देख सकें और उसके गुणों को समझ सकें। एकमात्र वही है जो हम पर परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। मित्रों, अब तीनों पदों के तीसरे वाक्यों को एक साथ रख करके देखें। वचन ही परमेश्वर था, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, उसी ने उसे प्रकट किया। मित्रों, जब वह पृथ्वी पर आया तब भी वह परमेश्वर ही था, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया, वही है जिसने परमेश्वर को हमारे सामने रखा कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से देख पाएं। मैं अंतरिक्ष अभियंता के बारे में पढ़ रहा था। वह उष्मा की विशेषज्ञ था जो अंतरिक्ष यान पर उष्मा रोधक कवच चढ़ाता था। उसने कहा, यह जगत तीन पदार्थों से बना हुआ है। मेरे विचार में परमेश्वर की उंगलियों के निशान हर एक पदार्थ पर हैं। त्रिएक परमेश्वर सर्वव्यापी है। उसने अपने इस कथन की व्याख्या की, जगत समय अंतरिक्ष और पदार्थ से बना हुआ है। क्या आप चौथा अवयव सुझा सकते हैं? समय तीन भागों में विभाजित है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। क्या समय का चौथा भाग भी है? अंतरिक्ष भी तीन भागों में विभाजित है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा कुछ है? इसी प्रकार पदार्थ भी ऊर्जा, गति और तत्वों में विभाजित है। अतः हमारा जगत त्रिएकत्व के चरित्र चित्रण को धारण किए हुए है। अब देखिए कि देह धारण इस अवलोकन में कैसे सुसंगत होता है। पहला हम देखते हैं समय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। दूसरा है अंतरिक्ष। वचन देहधारी होकर अंतरिक्ष में आया, कहां? बेतलेहम में, और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। तीसरा है पदार्थ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल एकमात्र पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। क्योंकि वह पदार्थ रूप में आया अर्थात मानव रूप, इसलिए मनुष्य उसे देख पाया। यह देह धारण का समय, स्थान और पदार्थ परिप्रेक्ष्य है। अब हम काल देखते हैं। भूतकाल, आदि में वचन था। वर्तमान काल, वचन देहधारी हुआ। भविष्यत काल, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल एकमात्र पुत्र ने उसे प्रकट किया। पौलुस ने भी फिलिपियों को लिखा, 3:10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ के मर्म को जानो। मित्रों, अब अंतरिक्ष या स्थान के विभाजन के साथ उसे देखें। लंबाई, आदि में वचन था। चौड़ाई, वह इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया। ऊंचाई, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल पुत्र स्वर्गिक ऊंचाई से नीचे आया कि परमेश्वर को प्रकट करे। अब उसे पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में देखिए। ऊर्जा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यह ऊर्जा है। जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? परमेश्वर ने कहा, एक बुद्धिजीवी के लिए जगत की उत्पत्ति बड़ी जटिल समस्या है। इसी कारण वह विकासवाद के सिद्धांत से संतुष्ट है। परंतु जगत की उत्पत्ति का उचित वर्णन यहाँ है। परमेश्वर ने कहा, सबसे पहली प्रक्रिया यह थी जिसकी प्रक्रिया से पदार्थ उत्पन्न हुआ। परमाणु विखंडन क्या है? परमेश्वर की रचनात्मक क्रिया का प्रत्यावर्तन अर्थात परमेश्वर की रचना को विखंडित करना। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। यदि इसे विखंडित किया जाए तो ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है, तो वह परमेश्वर की रचना है। हम आगे देखते हैं। गति, वचन स्वर की महिमा से उतरकर पृथ्वी पर आया। आगे है तत्व, परमेश्वर देहधारी हुआ, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म। अब हम पद 1, 14 और 18 को मुख्य निर्माण खंड के रूप में देखते हैं। अब इनको जोड़ने वाले पदार्थ को देखिए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:3 में पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। वह आदि में था, उसी ने जगत की रचना की, उसके बिना कुछ नहीं सृजा गया। हम यूहन्ना 1:4 में आगे पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अब हमारे सामने दो मूल तत्व आते हैं, ज्योति और जीवन। जीवन हमारे चारों ओर दिखाई देता है, परंतु क्या आप समझ सकते हैं कि जीवन क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने जीवन की खोज कर ली है, परंतु सत्य तो यह है कि उन्होंने जीवन की खोज नहीं की है। उन्होंने जीवन का विकास देखा है। इस विकास का कारण जीवन है। दूसरा है सर्वव्यापी तथ्य, ज्योति। ज्योति या प्रकाश क्या है? आज वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों द्वारा भी ज्योति का पता नहीं लगा पा रहे हैं। वे केवल ज्योति की किरणों को या तरंगों को ही देख पाते हैं। मित्रों, मसीह यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। संपूर्ण जीवन उसी में है। आप और मैं जिस जगत में रहते हैं वह आत्मिक अंधकार से परिपूर्ण है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 1:3 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उसने ज्योति के स्रोतों को सड़क की बत्तियों के समान स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां गहन अंधकार है, क्योंकि वहां ज्योति नहीं है। इस अंधकार से भी बढ़कर आत्मिक अंधकार है। यहां सूर्य के रहते ज्योति है और सूर्य के अस्त होने के बाद अंधकार छा जाता है, परंतु आत्मिक अंधकार 24 घंटे बना रहता है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है। वह परमेश्वर से विद्रोह की स्थिति में है। पाप मनुष्य को अंधा बना देता है और वह परमेश्वर को नहीं देख पाता। मित्रों, प्रभु यीशु में जीवन है और वह जीवन जब मनुष्य को मिल जाता है तब उसे ज्योति प्राप्त होती है। मसीह यीशु द्वारा दिया गया जीवन ही मनुष्य के मन में ज्योति जला सकता है। अविश्वासी में यह ज्योति नहीं है। इसी कारण जब आप उसे यीशु की चर्चा करते हैं या उसे बताते हैं तब वह कहता है मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। मेरे मित्रों, मैं जेल में कैदियों से भेंट करने जाता था और उनसे खेल तथा अन्य विषयों पर चर्चा करता था तो वे अत्यधिक प्रफुल्लित होकर सुनते, परंतु ज्यों ही मैं आत्मिक विषयों पर आता त्यों ही उनके चेहरों पर अंधकार स्पष्ट दिखाई देने लगता था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मुर्दों से बातें कर रहा हूँ। आज का संसार आत्मिक अंधकार में है। इस संसार में यदि ज्योति है तो वह केवल मसीह यीशु है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। योहन्नारचित सुसमाचार 1:5 में लिखा है और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अर्थात अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार उसे समान न पाया। यही कारण है कि संसार अंधकार में है और वह ज्योति को देख नहीं पाता। मित्रों, भौतिक अवस्था में अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते हैं। ज्योति के आते ही अंधकार दूर हो जाता है और ज्योति के जाते ही अंधकार फिर से आ जाता है। एक विश्वासी अविश्वासी से मसीही विश्वास की चर्चा करे तो वह कहता है आपका कहने का अर्थ क्या है? मैं यथासंभव भले काम करता हूँ, क्या मैं विश्वासी नहीं हूँ? यह ज्योति और अंधकार का उदाहरण है। अंधकार ज्योति को समान नहीं सकता। इस पद का यही अभिप्राय है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हम यूहन्ना 1:10 में पढ़ते हैं, लिखा है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुई और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मित्रों, यही संसार की त्रासदी है। अविश्वास और नास्तिकतावाद साथ साथ चलते हैं। आज अविश्वास और नास्तिकतावाद बढ़ रहा है। अविश्वास हमारे सेमिनरियों में जहां पर बाइबल अध्ययन किए जाते हैं और प्रचार मंचों पर भी पहुंच गया है। मुझे एक दिन किसी ने कहा आपने समाचार पत्र में पढ़ा कि सेमिनरी के एक डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्या यह एक बुरी बात है? मैंने कहा मैं नहीं सोचता। हमारे थियोलॉजी के ज्ञाता एवं प्राध्यापक कहते हैं कि वे मसीही नास्तिक हैं, जबकि नास्तिक शब्द ही मसीही विश्वास से अलग है। मेरे मित्रों, यूहन्ना 1:11 में हम पढ़ते हैं, लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने ही जगत में आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। तब हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मित्रों, यह अधिकार केवल उनका है जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। जब हम कहते हैं कि विश्वास करना तो वह मस्तिष्क से संबंधित ज्ञान के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि इसके साथ स्थान सूचक शब्द में लगा हुआ है। अतः कोई कहे मुझे विश्वास है तो वह पूरी बात नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि मैं कुर्सी के पास खड़ा होकर कहूं मुझे आशा है कि मैं इसमें बैठ पाऊंगा, परंतु सत्य तो यह है कि मैं उस पर बैठा ही नहीं हूं। जब मैं उस पर बैठ जाऊंगा तब ही तो मुझे विश्वास होगा कि वह मेरा भार सहन कर सकती है या नहीं। इसी प्रकार यदि मैं कहूं मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूं तो मुझे उसमें कार्यरत भी होना है, उस पर निर्भर करना है कि वह मेरा उद्धार करता है। मित्रों, किसी पर विश्वास करने के लिए हमें उसे क्रिया रूप में लाना पड़ेगा, लेकिन यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह असंभव है कि हम उसे क्रिया रूप में ला पाएं। मित्रों, हमें अपने अध्ययन को आज यहाँ पर रोकना होगा। अगले अध्ययन में हम अध्याय 1 के पद 19 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार उसे ग्रहण न कर सका। आज हम कहाँ पर हैं? अंधकार में हैं या ज्योति में हैं? आप अवश्य विचार करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास, 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 उनको आने दो मेरे पास।
विधवा